आशिका स्काई से जान बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया आ गई थी और अब उसका अगला डेस्टिनेशन इंडिया था। पिछले 50 घंटे में ही उसकी ज़िंदगी बदल कर रह गई थी। कहाँ वो अपने एक छोटे से कमरे में बैठकर पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने की ताकत रखती थी और वही आशिका अब अपनी जान बचाते हुए इधर से उधर भाग रही थी। आशिका अपनी तरफ से पूरी तरह बेफिक्र थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि स्काई ने ऑस्ट्रेलिया में भी अपने गुंडों को उसके पीछे लगा दिया था। वो इस बात का ध्यान रख रहे थे कि आशिका ऑस्ट्रेलिया से सीधे अपने पति से मिलने जाती है या फिर वहाँ से कहीं और के लिए निकलने वाली है। जब स्काई के गुंडों ने देखा कि आशिका एयरपोर्ट से बाहर जाने के बजाय कहीं और जाने की टिकट बुक करवा रही थी, तब वो समझ गए थे कि वो धोखा देने के प्लान में थी। स्काई के गुंडों ने आशिका को एयरपोर्ट से किडनैप करके उसके पास ले जाने का सोचा। आशिका अपना लगेज घसीटते हुए वेटिंग एरिया में जाकर बैठी हुई थी। स्काई के दो गुंडे उस पर नज़र रख रहे थे। आशिका ने अपना सिर पकड़कर कहा, पहले ही लाइफ कम मुश्किल थी क्या जो अब इतना सब कुछ हो गया? क्या मेरे डैड सच में इतने बुरे थे जो उन्होंने मुझे और मिसेज हिल को सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया था कि उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया था? तभी मिसेज हिल मुझसे इतनी नफरत करती हैं। जब उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं तो हर बार मुझे मुसीबत में क्यों डाल देती हैं? आशिका वहाँ बैठकर अपने हालातों के बारे में सोच रही थी। आशिका अपने डैड से नफरत करती थी क्योंकि तृप्ति ने उसे हमेशा यही बताया था कि उसके और उसके पिता के तलाक की वजह आशिका थी। आशिका के डैड हमेशा से एक लड़का चाहते थे और लड़की के पैदा होते ही उनकी शादी में दिक्कतें बढ़ गई थीं। जब आशिका लगभग 4 साल की थी तब उसके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया था। हालांकि आशिका को अपनी ज़िंदगी के वो 4 सालों का एक छोटा सा पल तक याद नहीं था, ना ही अपने पिता की शक्ल। आशिका को अपने पिता के साथ तृप्ति पर भी गुस्सा आ रहा था। तृप्ति ने हमेशा से उसकी ज़िंदगी मुसीबत में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन इस बार तो उसने हद कर दी थी। सोचते हुए आशिका के सिर में दर्द होने लगा। उसने अपना सामान वहीं छोड़ा और वॉशरूम में जाने लगी। इसी के साथ स्काई के गुंडे सतर्क हो गए थे। अब उन्हें अच्छा मौका मिल गया जब वो आशिका को किडनैप कर सकते थे। दूसरी तरफ तृप्ति अपनी सौतेली बेटी सेलिना के साथ एक स्पा में बैठकर हेड मसाज करवा रही थी। जब से उसने आशिका को स्काई को बेचा था तब से ना सिर्फ उनका लोन माफ कर दिया गया था बल्कि उसे एक अच्छी खासी लग्जरियस लाइफ भी मिल रही थी। तृप्ति के पास स्काई का मैसेज आया था जिसमें उसने यही लिखा था कि आशिका ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है, अभी तक उसने कोई गड़बड़ नहीं की थी। ये जानने के बाद तृप्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वहीं सेलिना की नज़र तृप्ति के चेहरे पर गई तो उसने तुरंत पूछा, आपके चेहरे की स्माइल बता रही है कि आशिका सही जगह पहुंच गई है। बिल्कुल ठीक पहचाना, मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया लेकिन तुम मुझे मेरी खुद की बेटी से ज़्यादा समझती हो, तृप्ति ने मुस्कुराकर कहा। भले ही सेलिना उसकी सौतेली बेटी हो लेकिन दोनों में बिल्कुल सगी माँ बेटी की तरह प्यार था। होता भी क्यों नहीं, दोनों एक जितनी ही मतलबी थीं। पैसे और अच्छी लाइफ के चलते दोनों किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती थीं। तृप्ति की बात सुनकर सेलिना हंस पड़ी थी। वो बोली, कम ऑन मॉम, यहाँ कोई नहीं है तो आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़की आपकी बेटी नहीं है, आप सिर्फ मेरी मॉम है और आप हमेशा से मेरी इंस्पिरेशन रही हैं। बदला लेना तो कोई आपसे सीखे। कितनी चालाकी से आपने अपनी ही दोस्त की बेटी को। इससे पहले कि सेलिना अपनी बात पूरी करती, तृप्ति ने हाथ के इशारे से उसे रोक लिया था। उसके चेहरे के भाव भी गंभीर हो गए थे। श, दीवारों के भी कान होते हैं, कुछ राज बस पता होते हैं, यही बड़ी बात होती है, उन्हें कभी जुबान पर नहीं लाना चाहिए, तृप्ति ने जवाब दिया तो सेलिना चुप हो गई थी। वहीं तृप्ति वापस अपनी जगह पर लेटकर मसाज का मज़ा लेने लगी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी और आंखें बंद थीं। तृप्ति के दिमाग में इस वक्त काफ़ी कुछ चल रहा था। उसने मन ही मन कहा, तुम हमेशा यही कहती थी कि हम दोस्त नहीं बहने हैं, लेकिन फिर भी उस लड़के से शादी कर ली जिससे मैंने प्यार किया था। अमीर होने का अच्छा फ़ायदा उठाया तुमने काजल, मेरे ही प्यार आशुतोष से शादी कर ली और मुझे जलाने के लिए अपनी हर खुशियों में मुझे शामिल करने के लिए बुलाती रही। हाँ, जानती हूँ आज तुम मुझसे नफरत करती हो और तुम्हें यही लगता है कि तुम्हारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। अच्छा होगा तुम किसी भ्रम में जीती रहो, तुम कभी नहीं जान पाओगी कि तुम्हारे और आशुतोष की बेटी आशिका आज भी जिंदा है। मैं उस लड़की की ज़िंदगी इस हद तक बर्बाद कर दूंगी कि उसे अपनी ज़िंदगी के हर पल में तुम्हारी बेटी होने की सज़ा चुकानी होगी। मेरे जीते जी तुम कभी अपनी बेटी आशिका से नहीं मिल पाओगी, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि जिस लड़की को तुमने गोद लिया और अपने जख्मों को भरने के लिए पास लेकर आई थी, वो लड़की आशी मेरी बेटी है। हाँ, यही तृप्ति की जिंदगी का सबसे बड़ा राज था जो उसने सलीना को कहने से रोक लिया था। आशिका को तृप्ति से हमेशा यही सुनने को मिला था कि उसके बाप के बुरे बर्ताव के चलते तृप्ति आशिका से इतनी नफरत करती है। अगर उसकी जगह बेटा पैदा होता तो शायद आज वो और उसका पति साथ रहते। जबकि सच ये था कि आशिका तृप्ति की ही बेस्ट फ्रेंड काजल की बेटी थी। अगर आशिका को किसी बात की सजा मिल रही थी तो उसका कारण था कि काजल और तृप्ति एक ही लड़के से प्यार करती थी और उस लड़के ने काजल को चुना था। कुछ राज इतने गहरे थे जिनके बारे में तृप्ति सोचना भी नहीं चाहती थी। काजल को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख देने के बाद भी उसे किसी तरह का अफसोस नहीं था। आज काजल को यही लग रहा था कि उसकी बेटी आशिका इस दुनिया में नहीं रही, तो उसने अपने दुख को भुलाने के लिए अनाथ आश्रम से एक लड़की को गोद लिया था। वो लड़की कोई और नहीं, तृप्ति की ही बेटी थी जो उसने वहां के लोगों के साथ मिलकर काजल के घर पर भेजा था। तृप्ति की बेटी आशी एक अच्छी जिंदगी बिता रही थी, उससे अलग आशिका की जिंदगी नरक से कम नहीं थी। अपनी बेटी के बारे में तृप्ति ने आज तक सेलिना तक को नहीं बताया था, यहां तक कि काजल और उसका पुराना परिवार तक तृप्ति की बेटी की मौजूदगी से अनजान था। तृप्ति अपने मकसद में कामयाब हो गई थी, आज वो अच्छी लाइफ बिता रही थी, तो उसकी दुश्मन की बेटी आशिका खुद की जान बचाने के लिए इधर उधर भटक रही थी। दूसरी तरफ इंडिया में अभिमान अपने केबिन में बैठा हुआ था। जब से सुबह आशिका उसके घर आई थी तब से वो और परेशान हो गया था। ऊपर से उसने विक्रम और सिद्धांत की बातें सुन ली थी। वो निशा को टारगेट करने का सोच रहे थे, उन्होंने तो आशी को घर तक बुला लिया था। अभिमान के पास ज्यादा वक्त नहीं था। इससे पहले कि निशा उनकी बातों में आकर उसे आशी को घर लाने के लिए फोर्स करती, वो उसे तलाक देना चाहता था। अभिमान अपने ख्यालों में खोया हुआ था तभी उसका मोबाइल बजा। उसने देखा अभिमन्यु का कॉल आ रहा था। अभिमान ने गहरी सांस लेकर कहा, तो मेरी शिकायत अब गोवा तक पहुंच गई है। लगा ही था मॉम के बाद वो अब दादू को मेरे पीछे लगाने वाले थे, लेकिन अभिमन्यु चाचू को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। अभिमान ने कॉल रिसीव नहीं किया, लेकिन दोबारा कॉल आने पर वो इग्नोर भी नहीं करना चाहता था। उसने कॉल रिसीव करके कहा, चाचू मैं कुछ समझने के मूड में नहीं हूं, और तुम्हें ये क्यों लगता है कि मेरे पास इतना टाइम है कि वो मैं तुम्हें समझाने में वेस्ट करने वाला हूं? अभिमन्यु ने भौहें उठाकर जवाब दिया। वो इस वक्त गाड़ी के अंदर पृथ्वी के साथ था।
ठीक है, फिर बताइए किस लिए कॉल किया है? अभी मेरी कंपनी इस लायक तो हुई नहीं कि आप प्रोफेशनली मुझे कॉल करके मेरे साथ किसी तरह का प्रोजेक्ट करने के बारे में सोचें, अभिमान ने सीधे सीधे पूछा। अभिमन्यु और अभिमान की राजवंश फैमिली में एक जैसे हालात थे, लेकिन उनके बर्ताव में जमीन आसमान का फर्क था। अभिमन्यु कम शब्दों में अपनी बात कहता था और साथ ही काफी मैच्योरिटी के साथ बिहेव करता था, तो वहीं अभिमान थोड़ा बदतमीज था। उसे कोई इंसान पसंद नहीं था तो वो उसके साथ बिल्कुल भी तहजीब से पेश नहीं आता था। सबसे पहले अपना टोन नीचे करो, बाकी परिवार को परेशान करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी वजह से छोटे दादू परेशान हो रहे हैं। आखिर चाहते क्या हो तुम? अगर अपनी फैमिली से इतनी प्रॉब्लम है तो उनके बीच क्यों रह रहे हो? अभिमन्यु ने सख्त लहजे में कहा। जितना आप अपने छोटे दादू से प्यार करते हैं उतना मैं भी करता हूँ, और मैंने उन्हें कभी परेशान करने की कोशिश नहीं की। बाकी राजवंश फैमिली की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि मैं क्या चाहता हूँ? मुझे उन्हें बर्बाद करना है, और मैं आपकी तरह नहीं जो खुद को तकलीफ देने वालों के बीच शांत रहकर सब कुछ सही करने की कोशिश करूँ। आई रिस्पेक्ट यू चाचू, और मैं सच में आपसे किसी तरह की बदतमीजी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे और राजवंश फैमिली के बीच में कभी मत आइएगा, वरना मैं भूल जाऊँगा कि कभी मैंने आपको अपना आइडल माना था। अभिमान ने भी पूरे एटीट्यूड से जवाब दिया और कॉल कट कर दिया था। फोन स्पीकर पर होने की वजह से अभिमन्यु और अभिमान के बीच की बातचीत पृथ्वी ने भी सुनी थी। पृथ्वी ने गहरी सांस ली और कहा, ये सच में बहुत बदतमीज है, और इसकी वजह कहीं ना कहीं आप भी हैं। राजवंश फैमिली आज तक इस बात से अनजान है कि अभिमान की कंपनी आज कितना ग्रो कर रही है, तो उसका एक कारण आप भी हैं। आपने उसकी शुरुआती दिनों में हेल्प की थी और वो आपसे ऐसी बात कर रहा है। लगता है अब तो सच में मुंबई जाकर भी अभिमान से बात करनी होगी। उसने मुझे यही कहा था कि वो आगे बढ़ना चाहता है। मैं उसकी बातों से उसके इरादे समझ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस हद तक चला जाएगा। खुद विक्रम अंकल और सिद्धांत भी नहीं जानते कि उन्हें बर्बाद करने के लिए अभिमान सभी जायज और नाजायज तरीके अपना रहा है। जायज तरीकों के लिए मैं उसे कभी मना नहीं करूंगा, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में ये सब चलता रहता है, लेकिन उसे कोई उल्टी सीधी हरकत भी नहीं करने दूंगा। पृथ्वी, राजवंश फैमिली में छोटे दादू और दादी के बाद अगर सच में मैंने किसी को अपना समझा है तो वो अभिमान है, और मैं उसे गलत रास्ता किसी भी हाल में नहीं पकड़ने दूंगा, अभिमन्यु ने जवाब दिया। पृथ्वी ने खुद अभिमन्यु को अभिमान की मदद करते और उसे हर कदम पर गाइड करते हुए देखा था। इस बात से राजवंश फैमिली आज तक अनजान थी कि अगर AR एम्पायर्स को आधी रात को भी फंड से रिलेटेड या किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो अभिमन्यु हमेशा अभिमान की मदद के लिए तैयार रहता था। अभिमन्यु ने उसे हमेशा अपने छोटे भाई की तरह प्यार किया था। अगर आज वो गलत रास्ता पकड़ रहा था तो अभिमन्यु इसे अपना फर्ज समझता था कि वो अभिमान को ये सब करने से रोके। वहीं दूसरी तरफ आशिका इस वक्त बाथरूम के अंदर गई थी। जैसे ही वो अंदर गई, पीछे से दरवाजा बंद होने की तेज आवाज आई। आशिका को लगा कि कोई और पैसेंजर वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए आया होगा, लेकिन जैसे ही वो हैंड वॉश करने के लिए आईने के सामने आई तो उसने देखा दो आदमी उसके पीछे गन लेकर खड़े हुए थे। कहाँ भागने की तैयारी हो रही है मिस सिंघानिया? ये अब हवा में उड़ने के बड़े बड़े ख्वाब छोड़ दो। जाना तो हमारे बॉस की बातों में ही है। धोखा देने के बजाय उनकी बात मानकर जाती तो ज्यादा फायदे में रहती, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कहते हैं ना, कुछ लोगों को जबरदस्ती की ही भाषा समझ में आती है, उनमें से एक गुंडे ने कहा और आशिका को बेहोश करने के लिए एक स्प्रे निकाला। आशिका कुछ रिएक्ट करने से पहले उसने उसे बेहोश कर दिया था।